नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज न्यूजीलैंड के 3 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंची। केंद्र सरकार सूचना क्रांति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ले जाने की योजना बना रही है। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में 3 छात्रों के पानी में डूबने से हुई मौत की जांच CBI ने अपने हाथ में ले ली है। बांग्लादेश में सेना के शीर्ष स्तर पर बड़े फेरबदल के बाद नए अधिकारियों ने आज देश के पुलिस बल को पुनर्गठित किया। और क्रिकेट में श्रीलंका ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। गवर्नर जनरल डेमी सेंडी कीरो ने निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज न्यूजीलैंड के 3 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंची। 8 साल बाद राष्ट्रपति की न्यूजीलैंड यात्रा होगी। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,48,00,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह योजना देशभर में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि प्रशिक्षण से इन उम्मीदवारों को रोजगार पाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4थे चरण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, परिधान, कृषि और लॉजिस्टिक युवाओं के सबसे पसंदीदा क्षेत्र रहे। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 पर चर्चा फिर से शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा चर्चा का उत्तर देने की संभावना। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल ने कहा है कि वित्त विधेयक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस वर्ष के बजट में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा है कि मौजूदा बजट देश में कराधान प्रणाली को सरल बनाएगा। उन्होंने भारतीय स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल्स टैक्स को खत्म करने के सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश की स्टार्टअप व्यवस्था को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस के महमूद हमदुल्लाह सईद ने आरोप लगाया है कि सरकार कॉर्पोरेट्स को अधिक छूट दे रही है और लोगों की तुलना में कॉर्पोरेट्स की कर देनदारियां कम है। उन्होंने सरकार से इंडेक्शन मुद्दे पर संबंधित अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार सूचना क्रांति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ले जाने की योजना बना रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने 65 स्टार्टअप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों में 57 केंद्रीय टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ग्रामीण भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए और पहल करेगी। श्री प्रसाद ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 54,00,000 रोजगार सृजित किए गए हैं। इन नौकरियों में महिला कर्मचारियों की भागीदारी 37% रही। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाल ही में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों के पानी में डूबने से हुई मौत की जांच CBI ने अपने हाथों में ले ली है। इससे पहले इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच के लिए समिति की गठन की है। यह समिति घटना के कारणों की जांच कर जरूरी उपाय सुझाने के साथ नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII और बिम्स्टेक व्यापार मंच परियोजना सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, नीति निर्माताओं और विचारकों, उद्योग और शिक्षा जगत, व्यापार संघों और व्यक्तिगत निवेशकों के महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों को एक ही मंच पर ला रहा है। नई दिल्ली में कल शिखर सम्मेलन में श्री मार्गरीटा ने कहा है कि वह इस तथ्य से भी प्रोत्साहित है कि महिलाओं को व्यापार की मुख्यधारा में लाना शिखर सम्मेलन की कार्यसूची का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो न केवल महिला केंद्रित है बल्कि महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने वाला भी है। श्री मार्गरिटा ने कहा है कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास भी भारत की G20 अध्यक्षता का एक अभिन्न अंग है और सतत विकास के लिए अनिवार्य है। श्री मार्गरिटा ने इस बात पर जोर दिया है कि बिम्स्टेक क्षेत्र में दुनिया की लगभग 25% आबादी रहती है, जो प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरह से संसाधनों से भरपूर है। उन्होंने कहा है कि बिम्स्टेक भारत के लिए विशेष महत्व रखता है और यह हमारी और पड़ोसी देशों सहित पूर्वी देशों को प्राथमिकता देने और सागर नीतियों को केंद्र में लाना है। मंत्री ने कहा है कि भारत युवाओं की क्षमता का दोहन करने के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण पहल को प्राथमिकता दे रहा है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का पहला आयोजन कल नई दिल्ली में किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बिम्स्टेक के सदस्यों देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। बिम्स्टेक 7 देशों का समूह है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। बांग्लादेश में सेना के शीर्ष स्तर पर बड़े फेरबदल के बाद नए अधिकारियों ने आज देश के पुलिस बल को पुनर्गठित किया है। नई व्यवस्था के तहत अपर पुलिस महानिरीक्षक मोहम्मद हारून ए.आर. राशिद को ए.के.एम. शाहिद रहमान के साथ रैपिड एक्शन बटालियन के महानिदेशक के रूप में बदला गया। वहीं मोहम्मद मैनुअल हसन को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस डीएमपी के नए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस मामले में गृह मंत्रालय के अंतर्गत जन सुरक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर, पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में तेज वर्षा की स्थिति बनी रहेगी और यही स्थिति तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा में भी रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में महिला पहलवान विनेश फोगाट कुछ ग्राम से अधिक वजन होने के कारण 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्रीस्टाइल कुश्ती की फाइनल स्पर्धा में अयोग्य घोषित कर दी गई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने एक वक्तव्य में कहा है कि रात में टीम द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद आज सुबह फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। इससे पहले विनेश फोगाट ने विश्व की नंबर 1 और टोक्यो 2020 की चैंपियन जापान के पहलवान यू सुकासी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। बाद में क्वार्टर फाइनल में विनेश ने यूक्रेन की पहलवान ओक्साना लिवाक को 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अंतिम मुकाबले में फोगाट ने क्यूबा की यूजनेलिस गुजमैन लोपेस को हराकर पदक पक्का किया है और ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। अब सबकी नजरें टेबल टेनिस की टीम मनिका बत्रा, श्रीराज अकुला और अर्चना काथम पर होगी। ये टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जर्मनी की टीम से भिड़ेगी। एथलेटिक्स में बाधा धावक ज्योति याराजी, हाई जंपर सवेश अनिल कुशोर और ट्रिपल जंप अब्दुल्ला एन और प्रवीण चित्रवेला अपनी अपनी स्पर्धा के पहले दौरे में उतरेंगे। एथलेटिक्स में भारत के लिए सबसे बड़ी स्पर्धा पुरुषों के 3000 मीटर की स्टीपल चेस फाइनल स्पर्धा होगी। इस स्पर्धा में अविनाश साबले पदक के लिए दौड़ लगाएंगे। यह स्पर्धा कल होगी। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओलंपिक खेलों में अब तक किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ओलंपिक खेलों में फोगाट के बेहतरीन प्रदर्शन ने देश और देशवासियों को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि ओलंपिक खेलों में फोगाट को अयोग्य ठहराना दुखद है। निराशा की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। वो एक चैंपियन है जो देश की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के दिलों में राज करती है। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने कोलंबो के आर प्रेमदास ऑस्ट्रेलिया में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ। श्रीलंका दूसरा एक दिवसीय मैच 32 रनों से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पहला मैच टाई पर समाप्त होने के बाद रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया केवल तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की श्रृंखला बराबर करने का प्रयास कर सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।